आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रुमीजा रब है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ दो, दादी माँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 4 निकाल लीजिए। पेज नंबर 4 और पाठ नंबर 2, दादी माँ। बच्चों, दादी माँ जो आपका पाठ का जो नाम है, उसी से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है। इस पाठ में अपन एक दादी माँ की कहानी को पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी को जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आप सबने पेज नंबर 4 निकाल लिया आपकी पुस्तक का। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है। चलिए बच्चों, मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िएगा। कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रारंभ अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? बच्चों, यहाँ पे जो है लेखक, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सदमा है जो उन्हें अंदर ही अंदर निगल रहा है, उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है, उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वो बोलते हैं, वसंत आता है, बारिश आती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही चल रही है। और दूसरी ओर दादी माँ ये कहते हुए भी बताती हैं कि जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे सामने तो कहते हैं कि गर्मियों की छुट्टी हम एक साथ व्यतीत करेंगे, एक साथ खुशी खुशी स्पेंड करेंगे, लेकिन पीठ पीछे मेरे वही दोस्त कहते हैं कि मैं बुजदिल हूँ, मैं चीजों का सामना करना नहीं जानती, मैं छोटी छोटी बातों में घबरा जाती हूँ। ये सारी बातें वो बोलते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आता जो एक ही चीज मेरे सामने हमेशा आंखों के और दिमाग में नाचती रहती। चलिए बच्चों, अब अपन सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 4 निकाल लीजिए आप सब। चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। मुझे लगता है जैसे व्यवहार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए गोता और साई की अधमनी झांसे, झेऊर और वन व्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चेत के दिनों में लाई के साथ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर व्यवहार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो बच्चों, ये जो आपका पैराग्राफ है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था, मैंने आपको एक साथ पढ़ा दिया, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक एक करके ही समझाऊंगी। सबसे पहले अपन ने मुझे लगता से ही शुरू किया था, जो आपकी पुस्तक का पेज नंबर 4 पे था। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हर मौसम में बदलाव आता है, मौसम बदलते हैं। वैसे ही गांव में चारों ओर ऐसा लग रहा था कि पानी की हिलोरें आ गई, मतलब बारिश का मौसम था, चारों ओर हरियाली थी। लोग जो घासें होती हैं बारिश की, वो पानी में डूबी डूबी उनकी सड़ने की महक पूरे में आ रही थी। रास्तों में भी कीचड़ था, लेकिन अब बारिश कम हो जाने के बाद वो कीचड़ सूख गया था, कम हो गया था। और ये भी बता रहा है ये लेखक कि अपने अपने समय में अपनी अपनी चीजें मशहूर होती हैं। जैसे हर मौसम में कोई एक चीज मशहूर होती है, जैसे गर्मी में आपको शरबत पीना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको शरबत या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं मिले बच्चों, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही बरसात का अलग होता है, सर्दी का अलग, की चाय जरूरी है, कॉफी जरूरी है, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही लेखक बोलते हैं कि अलग अलग, जैसे कि जामुन, आम और जामुन आपको गर्मी में चाहिए होती है, और गुड़ आपको नहीं मिले तो भी चिंता होती है। अगर चेत में आपको गुड़ और लाई नहीं मिले तो भी लोगों को परेशानी होती है। लेकिन लेखक बोलते हैं इन सब परेशानियों से सबसे बड़ी परेशानी कौन सी है बच्चों, बताइए। तो ये सब समझने के लिए अपन पहले पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं आपकी पुस्तक के। वहां पे लेखक बोल रहे हैं कि मुझे जो भरे तालाब होते हैं वहां पे कूदने में मजा आता है, वहां पे नहाने में मजा आता है। जब बारिश होती है बच्चों, तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो भी तालाबों में बदल जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो लेखक भी यही बोल रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्हें भी क्या करना पड़ रहा है, उन्हें भी नहाना पड़ रहा है। नहाना पड़ रहा क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी है, उन्हें अच्छा लगता है नहाना उन छोटी छोटी चीजों पे जो जिनके अंदर पानी भर रहा है, झाग भरे जल है जहाँ पे गंदपूर, वहां पे जाके कूद का नहाना। तो लेखक बोलते हैं मैं एक ही बार कूद पाया, एक बार या दो बार ही कूद पाया और नहा पाया। जब मैं नहा धोकर बाहर आया तो थोड़ा सा मैं बीमार हो गया। लेखक कहते हैं थोड़ी थोड़ी बीमारी तो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी बीमारी मतलब सर्दी हो जाना, बस ऐसा नॉर्मल सा बुखार हो जाना, ये सारी चीजें। वो बोलते हैं कि थोड़ा सा मुझे बुखार सा था, सर में भी थोड़ा सा दर्द था, लेकिन ये बीमारी कुछ अजीब ही थी, ऐसी कि वो चढ़ती गई, रजाई पे रजाई मुझे ओढ़नी पड़ी और मेरा पारा मतलब टेम्परेचर बढ़ता गया, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर वो 12 बजे के बाद, मतलब रात के 12 बजे के बाद थोड़ा कम हुआ। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आपकी पुस्तक का पेज नंबर 5 पे ही बच्चों। चलिए, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी आदेश शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रही, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपली की छाल में से छोपा कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? अब ये आपको पैराग्राफ बड़ा लंबा लग रहा होगा कि कैसे समझेंगे, बहुत ही इजी है और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। इससे पहले वाले पैराग्राफ में अपन ने क्या देखा था कि जो लड़का था, मतलब जो लेखक थे, वो नहा के आए तो उन्हें थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, वो सारी चीजें। तो अब यहाँ पे उसी पैराग्राफ से आगे बताया जा रहा है कि जो लेखक थे, जब वो थोड़े बीमार हो गए थे तो वो दिन में क्या कर रहे थे, सो रहे थे। जब इंसान बीमार होता है तो आराम करता है, वही लेखक भी कर रहे थे आराम से चादर ओढ़कर, क्योंकि सर्दी लगती है बुखार में, इसलिए वो चादर ओढ़कर आराम से सो रहे थे। उसी वक्त उनकी दादी माँ आई। तो दादी माँ कहाँ से आ रही थी, वो भी नहा के आ रही थी वही झाग वाले जल से। वो एक तो बहुत ही पतली दुबली थी, सफेद धोती पहनती थी और उनका जो बाल थे, बाल धो के आई थी तो जो बाल का जो जल था वो एक तरीके से टपक रहा था। आज जैसे ही वो आई लेखक के पास, उन्हें देखा, सबसे पहले उनने अपने जो सर था उसके बाल को सही किया, मतलब पोछे, गीले बाल को सुखाया। उसके बाद अपनी आंचल की गांठ खोली, मतलब जो उनकी साड़ी या जो भी वो ओढ़ी थी उसकी गांठ खोली। उसमें वो क्या लाई थी, किसी चबूतरे की मिट्टी लाई थी जो उनने किसके माथे पे लगाई, अपने माथे पे लगाई और लेखक के माथे पे भी लगाई। और वो क्या कर रही थी, वो इतना टेंशन में आ गई थी, परेशान हो गई थी जब लेखक बीमार थे, कि वो दिन भर चारपाई पर बैठी रहती थी, पंखा करती थी लेखक पर और ये देखती थी कि क्या हो रहा है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है नहीं, उसके सर को सहलाती थी, हाथ पैरों को दबाती थी, दालचीनी का लेप लगाती थी, कभी छू छू कर ये देखने की कोशिश करती थी कि बुखार कम हो रहा है या नहीं। जो दादी माँ थी उनके बहुत से सवाल थे, वो बहुत ही सवाल करती, जैसे खिचड़ी में मूंग की दाल गल गई है या नहीं, मिल गई है या नहीं, बीमार के घर में कोई आया है तो वो सीधे अंदर तो नहीं आ गया है, और बहुत से ऐसे प्रश्न करती थी जो घर वालों को और लेखक को परेशान कर लेता था। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों, वैसे वैसे इंसान में थोड़ी ऐसी बदलाव होते हैं, ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे चिड़चिड़ापन आ जाता है, ज्यादा सवाल पूछना, लोगों से दूर रहना थोड़ा, और भी बहुत सी चीजें। दादी माँ के सवालों का जवाब देते देते वो परेशान हो जाता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपके पुस्तक का पेज नंबर 5, ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप भी साथ साथ देखिएगा। ये चैप्टर बच्चों बहुत ही बड़ा है ये पार्ट, तो बड़े बड़े ही पैराग्राफ आपको पढ़ के समझाने पड़ेंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिए और पढ़िए। देखिए चलिए पढ़ते हैं। दादी माँ को गवी गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार, गुंगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैं महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेर मिक्सचर की शीशी की पिटाई के डर से बुखार भाग भी जाता है,
पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होगा। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? वो अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं। वो दादी माँ की खूबियां बताते हुए बोलते हैं कि दादी माँ को हमारे जो उनका गांव था वहां पे 50 किस्म की बीमारियों का इलाज आता था और उन्हें दवा पता था। क्योंकि बच्चों, जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे आपके भी घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी उनकी पहुंच होती है कि वो चीजों को जान लेते हैं। वो जड़ी बूटियों से या घर में रखी चीजों से इलाज ढूंढ निकालते हैं। तो वही बोलता है लेखक, बोल रहे हैं कि हमारी दादी भी किसी की भी तबीयत खराब होती गांव में तो वह वहां जाती थी, हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती थी और देखती थी कि इसे कौन सी बीमारी है। उन्हें सारी बीमारियों का इलाज आता था, जैसे कि मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया और भी। और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा सफाई थी, सर्दी हो या गर्मी, रोज सवेरे उन्हें नहाना है तो नहाना है, सारी चीजों को पवित्र करना है, साफ करना है तो करना। अगर दवा में देर हो जाती थी या शहद या मिश्री घर में खत्म हो जाती, कोई गंदा चीजें करता, मतलब कि गंदे चादर नहीं बदले जाते, तो वो पागल हो जाती थी गुस्से के मारे, क्योंकि उन्हें ये गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सफाई को पसंद करती थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि लोग आस पास जो है सफाई से ही पेश आए। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, मुझे अभी भी बुखार आता है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि अब मुझे नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज मुझे खिचड़ी या साबूदानी की खिचड़ी दे जाते हैं, जो भी, क्योंकि ज्यादातर ये माना जाता है बच्चों कि बुखार में रोटी नहीं खिलाना चाहिए। तो वही परंपरा को यहाँ हमारे लेखक दर्शा रहे हैं कि बुखार में वो खिचड़ी या साबूदाना खा रहे हैं। डॉक्टर भी आते हैं, उनकी नाड़ी देख जाते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है ज्यादा, लेकिन अब जो लेखक है वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर वो बात नहीं रही, मतलब अभी भी मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन कोई वैसे मेरी केयर करने के लिए, कोई ऐसी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। अब ऐसे बुखार को मुझे बुलाने में मजा भी नहीं आता, जैसा बुखार मेरी दादी माँ के जमाने में आया करता था, जो मेरी इतनी केयर करती थी, इतनी फिक्र करती थी कि मैं खुद भी नहीं सोच पाता था। चलिए बच्चों, आप सब अपनी पुस्तक के पेज नंबर 6 को निकाल लीजिए। यहाँ पे एक आपको एक पिक्चर तस्वीर दी गई है, जहाँ पे दादी अम्मा है और एक औरत है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा। ये भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ आप भी पढ़िएगा, फिर एक एक चीज मैं आपको समझाती जाऊँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुत्र विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबली रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नू, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि लेखक कहते हैं कि उनके जो बड़े भाई थे, अब यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा बच्चों कि उनके सगे भाई थे या उनके कजिन थे, उनके चाचा मामा मौसी के लड़के थे, बस ये बताया जा रहा है कि जो लेखक के भाई हैं किशन, उनकी जैसे ही शादी आती है तो जो दादी थी उन्हें सारी चीजों को सर पे उठा लिया। उन्हें पूरे घर में गदर मचाना शुरू कर दी। कोई उन्हें बुलाने आता, उन्हें पुकारने आता तो वो जाती थी और कहती कि मेरे बगैर इस घर में एक भी काम नहीं होता है। लेकिन सब जानते थे कि दादी माँ कोई काम करती नहीं, लेकिन अगर वो कोई काम जब हो रहा है उस समय उपस्थित नहीं रहती तो एक विलंब का कारण हो जाता है, मतलब एक मुसीबत सी आ जाती है, क्योंकि शायद जो कर रहा हो काम वो उनके हिसाब से, उनकी मन मर्जी के हिसाब से ना करे। और फिर वही लेखक बोलते हैं कि एक दिन वो दोपहर में घर की तरफ वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहरी हिस्से में, मतलब घर के बाहर जो छोटा सा बरामदा टाइप होता है, आंगन टाइप, उसमें दादी माँ खड़े किसी को चिल्ला रही है और वो औरत कोई और नहीं दुबकी रामी की चाची है। दुबकी रामी एक लड़की है, उसकी चाची है। और वो दादी माँ कह रही है कि तुम क्या कर रही हो, तुम रोज मुझे पागल बना रही हो। जब तुम मुझसे पैसे उधार लेने आई थी तब तो मैंने तुम्हें दे दिए थे, तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है? तुम्हें उस वक्त कोई पैसे नहीं दे रहा था जब मैंने तुम्हें दिए थे, लेकिन तुम मेरा एहसान नहीं मान रही हो, तुम मुझे पागल समझ रही हो। जब मैं तुमसे पैसे वापस मांग रही हूँ तो तुम सिर्फ एक ही शब्द कहती हो, फसल कटेगी तो दूंगी। दादी माँ गुस्से में कहती है, तुम्हारे लिए एक अलग फसल कटेगी क्या? ये सारी चीजें बता रही हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 7 निकाल लीजिए आप। पहला पैराग्राफ, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रामी की चाची है वो रो दी जब दादी माँ का गुस्सा देखा और सारी बातें सुनी तो वो रोने लगी और वो हाथ जोड़कर रोते हुए दादी माँ के पैर छूने के लिए बड़ी और बोलती है कि मेरी बिटिया की, मतलब मेरी बेटी की शादी है दादी माँ, आप कुछ मदद कर दीजिए, अगर आप मदद नहीं करेंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई भी नहीं है, इसलिए कृपया करके प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 7, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हट हट बोल रही थी दादी कि मैं नहा के आ रही हूँ, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है औरत, तो उतने में कौन आया? उतने में लेखक आए और लेखक बोलते हैं कि बेचारी गरीब है, दादी माँ दे देगी, आप इतनी मुसीबत क्यों कर रही हैं, आप इतनी सवाल जवाब क्यों कर रही हैं और आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं, वो दे देगी। तो जब लेखक ने ये बोला तो दादी माँ बोलती हैं, चल चल मुझे मत समझा, तुम चुप रहो, लेखक पे भी वो गुस्सा हो जाती है। चलिए बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक का पेज नंबर 7, मैं चुपके से आंगन, मैं चुपके से आंगन आप सबको मिल गया। हाँ बच्चों अपन को अब यहीं से पढ़ना है, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वे दादी को फूटो फलो धुओ नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है? धन्नो चाची, उसने विलह होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, दस पांच के लिए हसाई ना हो, देखता है बैठा देवता। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले तो दादी माँ उस पर बहुत गुस्सा हूँ कि तू मेरा खर्चा नहीं दे रही है। आगे देखते हैं क्या हुआ कि वो क्या हो गई, वो आंगन में चली गई और उस औरत की और लेखक की उन्हें बात नहीं सुनी। फिर लेखक कहते हैं बहुत दिन हो गए, सब कुछ वो भूल गए कि उन्हें याद भी नहीं रहा ऐसा कुछ हुआ था दादी माँ और उनके बीच। रामी की चाची मिली, किसे, लेखक को मिली, क्योंकि जो रामी की चाची है वो रास्ते से जा रही थी और लेखक भी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो जो रामी की चाची है वो बोलती है कि दूतो फलो दूतो नहाओ, मतलब वो आशीर्वाद देती है कि आपकी पूरी जनता मतलब आपका परिवार खूब फले और खूब बड़े, आपका आशीर्वाद हो, भगवान आपको खुश रखे। ये सारा आशीर्वाद रामी की चाची दे रही थी। उतने में लेखक पूछता है कि हे धन्नो चाची, ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी खुश हैं? तो धन्नो चाची खुशी खुशी बोलती हैं, बहुत खुश होकर, कि मैं क्या बताऊं क्या हो गया, हमारी अम्मा मतलब तुम्हारी दादी आई थी और वो जितने भी पिछले के पैसे थे, पिछला बकाया मेरे पैसे थे, उन सबको माफ कर गई और ऊपर से 10 रुपए का नोट मुझे दे गई और उनने बोला कि जैसे तेरी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है, देखता ना करे कि किसी की बेटी की शादी में विवाह में कुछ कमी हो, ये ले पैसे रख और अच्छे से शादी कर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आपकी पुस्तक का पेज नंबर 7 उस रोज जो आपका पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। चलिए, उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, वे तो बड़े लोगों का काम है बापू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुतोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका, मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वे भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बल्हा का मन एक सा होता है। तो बच्चों इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे जो औरत थी जिसको दादी माँ 10 रुपए दे के आई थी और उसके पहले के जितने भी पैसे थे कर्ज था माफ कर आई थी, उसी औरत से जो लेखक है वो पूछते हैं कि उस दिन तो दादी अम्मा आपको बहुत डांट रही थी, फिर आज इतनी बड़ी मेहरबानी कैसे और क्या। तो वो जो औरत थी वो बोलती है कि ये तो बड़े लोगों की आदत होती है, अमीर लोगों की आदत होती है कि वो हम पे दया भी करते हैं और फिर थोड़ा बहुत डांटे नहीं तो क्या, मजा भी नहीं आएगा और उनको खुद ऐसा लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनकर लेखक हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और लेखक ये भी बताते हैं कि उनके भाई किशन का विवाह आ गया था, चारों ओर अफरा तफरी थी, औरतें घरों में आती थी, उनके रात रात भर नाच गाना होता था और अलग अलग तरीके के गीत गाए जाते थे, बजाए जाते थे। लेखक की तबीयत खराब थी क्योंकि उन्हें नहा लिया था, ये अपन पाठ के पहले पन्नों पे देख चुके हैं, तो उसकी वजह से लेखक अपने भाई की बारात में नहीं जा पाए। और लेखक दूसरी ओर ये भी बताते हैं कि उनके जो ममेरा भाई थे वो राघव थे, वो भी देर में पहुंचे थे बारात में, तो कुछ औरतों ने उस पर सवाल उठाया कि तुम ऐसे क्यों आए हो, तो दादी अम्मा उनसे भी लड़ पड़ी कि लड़के से आप ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब लड़के से क्या पर्दा, वो तो अपने घर का ही लड़का है, तो आप ये नहीं बोल सकती कि वो देर में आया है या जल्दी में आया है। इस बात पे भी दादी माँ की बहस हो गई। तो ये सारी चीजों को दर्शाना चाह रहे हैं हमारे इस पाठ के लेखक। तो चलिए बच्चों, इस ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो आगे का चैप्टर है वो अपन अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, शुक्रिया सुनने के लिए।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।